39वीं कारिका से हम लोग पढ़ना आज शुरू करेंगे। जो प्रसंग है वही प्रसंग अभी चल रहा है। यो यस्य स्वमिव ज्ञानम दर्शनम नाभिसंकते स्थितम प्रत्यक्ष पक्षेतम कथमन्यो निवर्तयेत। एक पहले मैं समझा दूं आपको कि किसी ने गुड़ खाया, मिश्री खाया, और खाने के बाद जो है ना उसको मीठा का अनुभव हुआ, मीठा लगा उसको खाने में। अब कोई लाख सामने वाला तर्क दे करके कहे कि गुड़ मीठा नहीं होता है, चीनी मीठी नहीं होती है, तो जिसने अनुभव किया है खा करके मीठापन का, वो उसकी बात मानेगा क्या? वो कभी कहेगा कि हाँ गुड़ जो है मीठा नहीं है, चीनी मीठी नहीं है? तो तर्क के द्वारा जो है हर बात को न झुठलाया जा सकता है, न सही ठहराया जा सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद फिर अपनी कारिका पर ध्यान दीजिए। यो यस्य दर्शनम स्वम ज्ञानम इव न अभिसंकते, जो व्यक्ति अपने दर्शन का माने जिसको वह देखता है उसको अपने स्वज्ञानम इव अपने ज्ञान की तरह समझता है, माने स्वयं अनुभव करता है, ऐसे व्यक्ति को कथम अन्यो निवर्तयेत, किस प्रकार से अन्य कोई व्यक्ति जो है ना तर्क के आधार पर उसको निवृत्त कर सकता है, उसको मना कर सकता है? तो यो यस्य ज्ञानम, यो यस्य दर्शनम स्वम इव ज्ञानम, जो जिस अपना दर्शन जो है उसको अपने ज्ञान से अपना अनुभव करके जो है ना उसको समझता है, न अभिसंकते, उसमें उसको क्यों शंका होगी, कोई शंका नहीं होगी जिसने अनुभव किया। स्थितम प्रत्यक्ष पक्षेतम, और जिसने प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया है उसमें जो स्थित व्यक्ति है और ये मान चुका है कि यह ऐसा है, कथम अन्यो निवर्तयेत, उसको जो है अन्य व्यक्ति कैसे जो है ना उसको अपने ज्ञान से डिगा सकता है। यहाँ पर एक बात और भी हो सकती है कि कहा कि जो जिसने शर्करा के माधुर्य का अनुभव किया उसको के मन में कभी ये शंका नहीं होती है कि शर्करा मधुर होती है या नहीं होती है। हाँ, जो अनभिज्ञ व्यक्ति है जिसने शर्करा का अनुभव नहीं किया उसी को शंका होती है कि शर्करा मधुरा नवा, शर्करा जो है मधुर होती है या नहीं होती है। अब जो अनभिज्ञ व्यक्ति है उसके मन में संदेह हुआ, इसके कारण से जो जिसने अनुभव किया है वो अपने उसके मन में तो संदेह उत्पन्न नहीं होगा ना। तो अब जैसे अपने महर्षि लोग हैं, महर्षियों ने अनुभव करके बताया कि अयम साधु अयम असाधु, अयम धर्म अयम अधर्म, और उसको जो है ना तार्किक लोग अगर कहें, तार्किक के मन में अगर शंका हो कि ये धर्म है या नहीं है, तो उनकी शंका से महर्षियों पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसी बात को 39वीं कारिका में बताया गया। अब 40वीं कारिका में है कि इदम पुण्यम इदम पापम इत्ये तस्मिन पदद्वये, ये जो पद द्वय है, दो पद हैं यहाँ पर, एक है इदम पुण्यम और एक है इदम पापम, माने यह पुण्य है और यह पाप है, इस तरह के जो दो पद हैं इसके निर्धारण करने के लिए समंग शास्त्र प्रयोजनम, शास्त्र का जो है ना इसमें प्रयोजन आता है, शास्त्र के द्वारा ही जो है ना ये निर्णय हो पाता है कि इदम पुण्यम इदम पापम, और ये केवल जो है ना किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए है। इसलिए कहा आचंडालं मनुष्यानाम, आचंडालं का तात्पर्य है कि द्विज से लेकर के अंत्यज पर्यंत, ब्राह्मण से लेकर के शूद्र पर्यंत, जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए समम शास्त्र प्रयोजनम, एक ही टाइप का जो है एक ही प्रकार का शास्त्र का प्रयोजन सबके लिए है, क्योंकि बिना शास्त्र के जो है ना ये इदम पुण्यम और इदम पापम ये जो पदद्वय है इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। अब 41वीं कारिका में है कि चैतन्यम इव यश्च अयम अविच्छेदेन वर्तते आगमस्तम उपासीनो हेतुवादेर न बाध्यते। चैतन्यम इव, चैतन्य का नाम हो सकता है आपने सुना होगा, ऐसे आत्मा को चैतन्य कहते हैं। ये जो है ना मुर्दा में और जीवित शरीर में क्या अंतर है? सारे हाथ पांव आँख कान नाक ये सब जो है ना जीवित शरीर में जैसा होता है वैसा तो मुर्दे में भी होता है। एक चीज का केवल अंतर है, चैतन्य का अंतर है। जीवित शरीर में चैतन्य रहता है और मुर्दा में चैतन्य नहीं रहता है। अब इस चैतन्य जो रहने वाला है ना, उसी के लिए व्यक्ति प्रयोग करता है कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ। ये मैं जो प्रयोग होता है ये किसके लिए होता है? चैतन्य के लिए ही प्रयोग होता है, शरीर के लिए नहीं प्रयोग होता है। तो व्यवहार की बात मैं बता रहा हूँ। तो कहा कि चैतन्यम इव यह अयम अविच्छेदेन वर्तते। अयम से पकड़ना है आगम को, कि यह जो आगम है वह यह आगम चैतन्य की तरह अविच्छेदेन वर्तते। इसमें जो है लगातार निरंतर सनातन रूप से जो है ये आगम की परंपरा चली आ रही है। जैसे चैतन्य जो है हमेशा जो है रहा है, ये नहीं कह सकते कि पहले आत्मा थी अब नहीं है, या अभी है पहले नहीं थी, या बाद में नहीं रहेगी। इस तरह जैसे चैतन्य अविच्छिन्न रूप से रहता है, उसी तरह से आगम भी जो है वह अविच्छिन्न रूप से होता है। और उस आगम का जो उपासीन है, आगम तम उपासीन, हाँ उपासीन मतलब जिसने आगम की उपासना की है, जिसने आगम का अनुपालन किया है, जिसने आगम का अनुशीलन किया है, उसको कहेंगे आगम का उपासीन व्यक्ति। ऐसा जो व्यक्ति है उसको हेतुबादेह न बाध्यते। हेतुबादेह का यहाँ पर अर्थ करना है विरोधी तर्क ही है। विरोधी तर्क के द्वारा ऐसे जो उपासीन व्यक्ति हैं उसको बाधित नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। यहाँ जो आगम शब्द है इसका अर्थ वही करना है, वेद और स्मृति, श्रुति और स्मृति, इसकी जो परंपरा है वो अविच्छिन्न परंपरा है, जैसे कि चैतन्य की अविच्छिन्न परंपरा रही है। अब 42वीं कारिका है कि हस्तस्पर्शादि बाधेन विस्मेपि अभिधावता अनुमान प्रधानेन विनिपातो न दुर्लभः। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना ये मजाक टाइप से भी कह रहे हैं कि जिसने केवल अनुमान के आधार पर, तर्क के आधार पर ही कर लिया है निर्णय कि अनुमान से जो सिद्ध होगा वही हम मानेंगे, अनुमान से सिद्ध नहीं होगा उसको हम नहीं मानेंगे, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए कहा गया है कि कोई अंधा व्यक्ति जो है वह कैसे चलता है। तो अंधा व्यक्ति चलता है हाथ से छू छू करके, कहाँ दीवाल है कहाँ गेट है और ये सब देख करके चलता है, या लाठी से ठोक ठोक करके जमीन पर देखता है कि खाली है कि नहीं है, कुछ आ तो नहीं रहा है सामने, इस तरह से चलता है। या फिर किसी का जो है ना हाथ पकड़ करके या कंधा पकड़ करके अंधा व्यक्ति जो है वह चलता है। ऐसा जो अंधा व्यक्ति है वह हस्तस्पर्शादि बाधे ना, उस अंधे व्यक्ति का हाथ बांध दीजिए, वह जो हाथ से स्पर्श करता है तो चलता है, तो हाथ को बांध दीजिए कि वह स्पर्श न कर पावे। और हस्तस्पर्श आदि आदि से उसको ले लीजिए जिसका कंधा पकड़ के चलता है, जिसका हाथ पकड़ के चलता है या लाठी पकड़ के चलता है, तो वो सब भी जो है ना उन सबों को भी हटा दीजिए। तो ये हुआ हस्तस्पर्श आदि बाधे ना, कि हस्तस्पर्श आदि का बाध होने पर माने उसका विच्छेद होने पर, उसको अलग हो जाने पर, और विषमेपि अभिधावता, और रास्ता भी जो है ना वो विषम है, सम नहीं है, उबर खाबर वाला रास्ता है, और उसमें अभिधावता उसमें जो है ना वह दौड़ने लगे, अगर वह अंधा व्यक्ति अगर दौड़ने लगे उबर खाबर वाले रास्ते में और उसके पास कोई साधन नहीं है, ना लाठी है, ना हाथ भी उसका बंधा हुआ है, किसी दूसरे का सहारा भी वो नहीं ले रहा है, और ऊबर खाबर वाले रास्ते में अगर वो अभिधावन करे, दौड़े, और कैसे दौड़े, तो अनुमान प्रधान है ना, और अनुमान करते हुए दौड़े, अच्छा यहाँ पर कुछ होगा यहाँ पर कुछ नहीं होगा ऐसा अनुमान मन ही मन करता रहे और उस पर अंधा व्यक्ति दौड़ता रहे तो क्या होगा, विनिपात वो न दुर्लभ। विनिपात माने गिर जाना, पतन, तो उसका पतन जो है दुर्लभ नहीं है, अर्थात वह जो है ना अवश्य ही गिरेगा और गिर करके उसका हाथ पांव भी टूट जाएगा और वो जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ उस लक्ष्य को भी वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए केवल अनुमान से जो है ना आप चाहेंगे आगम प्रमाण को जो है ना किनारे करके केवल अनुमान प्रमाण से आप सब कुछ अगर करना चाहेंगे तो वही स्थिति होगी, वही दशा आपकी होगी जो दशा उस अंधे व्यक्ति की होती है जिसका कि हाथ बांध दिया, लाठी छीन लिया और किसी का सहारा जो था उसको भी हटा लिया और उसको रास्ते पर जो है ना दौड़ा दिया ताकि अनुमान करते हुए रास्ते का और फिर तुम दौड़ते चले जाओ। तो उस तरह की ही हालत जो है ये आगम प्रमाण को नहीं मानने वाले जो हैं उस व्यक्ति की होगी। अब यहाँ पर लास्ट में 43वीं कारिका में निष्कर्ष कहते हैं, अभी तक का ये जितना भी प्रकरण था अनुमान के बारे में जो बताया गया था और आगम प्रमाण के बारे में बताया गया था उसका निष्कर्ष करते हुए एक कारिका में कहते हैं कि तस्मात माने तस्मात कारणात, इससे पहले जो युक्तियाँ बताई गई हैं जो बातें कही गई हैं उन कारणों से अकृतकम शास्त्रम स्मृतिम च स्वनिबंधनाम। अकृतकम शास्त्रम, अकृतक, कृतक कहते हैं अनित्य को और अकृतक कहते हैं नित्य को, तो जो अकृतक शास्त्र है कौन है अकृतक शास्त्र, तो वेद है। और स्मृतिम च स्वनिबंधनाम, और स्मृति को, और वह स्मृति का भी क्या, तो स्वनिबंधनाम, यहाँ स्वनिबंधनाम का अर्थ करना है सांगाम अने अंग सहिताम। तो स्मृतियाँ जो अनेकों प्रकार की हैं, ये नहीं कि एकाध स्मृति, तो जित मैंने श्रुति और स्मृति दोनों को ही जो है आश्रित्य आश्रयन करके आधार बना करके शिष्ट यह शब्दानाम अनुशासनम आरभते, शिष्टों के द्वारा शब्दों का अनुशासन कार्य का आरंभ किया जाता है। यहाँ पर जो शिष्ट है उस शिष्ट से किसको लेना है, आधुनिक संदर्भ में तो अपने जो मुनित्रय हैं पाणिनि कात्यायन पतंजलि, वही तीनों यहाँ शिष्ट के द्वारा गृहित होंगे। और उन शिष्टों ने किस आधार पर जो है शब्दानुशासन का कार्य किया, आप जानते हैं ना कि शब्दानुशासन जो है वो व्याकरण का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द है। व्याकरण किसी का में क्या होता है, तो शब्दानाम अनुशासनम भवति, शब्दों का इसमें अनुशासन किया जाता है। अनुशासन कैसे किया जाता है कि अयम शब्द साधु अयम शब्द असाधु, जैसे मान लीजिए आप इको यनचि पढ़ते हैं उसका अर्थ है ना इके इको इकस्थाने यन स्यादचि संहितायाम विषय, तो इसका जो है ना अगर आचार्य लेवल का अर्थ करना चाहें तो इसका अर्थ होगा कि इक स्थाने यन साधु, माने इक के स्थान में यन जो होता है वह साधु होता है। तो अब शुद्धि उपास्या में अगर आप यन नहीं करेंगे शुद्धि उपास्या कहेंगे तो ये असाधु हो जाएगा, और यन करके प्रयोग करेंगे शुद्धि उपास्या नहीं कह करके शुद्धि उपास्या कहेंगे तो यह साधु हो जाएगा। तो यही है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन किस तरह के शब्द का अनुशासन, तो शब्द में साधुत्व का अनुशासन जो है इस शास्त्र के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, तो शिष्टों के द्वारा, शिष्ट जो हैं अपने त्रिमुनि जो हैं उनके द्वारा किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, तो वेद और सांग स्मृति के आधार पर जो है इस शब्दानुशासन का आरंभ शिष्टों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर फाइनल ये हुआ कि शब्द जो है वह तो नित्य है, श्रुति स्मृतियाँ भी जो हैं वो अनादि हैं, व्याकरण भी अनादि हैं, तो व्याकरण के द्वारा कोई नवीन शब्द की प्रयोग नवीन शब्द की कल्पना नहीं होती है, जो शब्द अनादि है उसी के बारे में केवल बताया जाता है कि अयम शब्द साधु हो अयम शब्द असाधु। इस तरह से यहाँ पर जो है ये वाला प्रसंग खत्म हुआ। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो मैंने भूमिका के क्रम में कहा था कि स्फोट के बारे में जो है ना इस ब्रह्मकांड में बहुत कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो अब वो वाला जो प्रकरण है वो प्रकरण 44वीं कारिका से आपका स्टार्ट होगा, जिसकी पहली कारिका है द्वाब उपादान शब्देशु। और ये जो है ना, ये परीक्षा में भी द्वाब उपादान शब्देशु जो है ना व्याख्या के लिए आता है, 6 नंबर में भी आता है, तो इस कारिका को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ से जो है ना काफ़ी दूर तक जो है आपको स्फोट के बारे में, और स्फोट में जो ध्वनियाँ होती हैं प्राकृत ध्वनि व्यकृत ध्वनि, तो इसके बारे में भी, स्फोट और ध्वनि इन दोनों के बारे में जो है आपको बहुत लंबे तक जो है ना आपको इस कारिकाओं के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो वो संदर्भ भी बदल रहा है, तो आज का पाठ जो है हम यहीं पर स्थगित करते हैं।